بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ما يعملون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، ارثات ان پر کارے بدھ رہتے، تو نسندے وے اپنے اوپر اور پیروں کے نیچے سے ایشوریے ویبھوتیاں پرابت کرتے، उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज शनिवार है, जुलाई की 16, तीर माह की 25 और जिलहिज की 16 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम आपको विश्व समाचार सुनवाएंगे, विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत दहे इमामत व विलायत के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा। हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा उज्ज्वल भविष्य। तो ये थी रूपरेखा। आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने नौसेना के पहले ड्रोन बेड़े का अनावरण किया है। ईरान के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का रास्ता खोजेगा। बुल्ला का कहना है कि अगर युद्ध होता है तो जीत हमारी ही होगी। हमास ने कहा है कि बाइडेन की यात्रा इसराइल को मुक्ति नहीं दिला सकती। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरान की नौसेना ने पहले ड्रोन बेड़े का अनावरण किया है। लगातार दुश्मनों की ओर से मिल रही धमकियों के बीच हुए ड्रोन बेड़े के अनावरण ने कथित महाशक्तियों को हैरान कर दिया है। ईरान की सामरिक नौसेना के पहले ड्रोन बेड़े का सेना प्रमुख की उपस्थिति में अनावरण किया गया। ईरान की रणनीतिक नौसेना ने पहले यूएवी वाहक बेड़े का अनावरण किया। नौसेना के दक्षिणी बेड़े में सभी प्रकार के ड्रोन शामिल किए गए। इस बेड़े में युद्धक ड्रोन, निगरानी और जासूसी ड्रोन समेत दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाले सारे ड्रोन शामिल थे। इस विशेष युद्धक ड्रोन बेड़े के अनावरण के मौके पर ईरानी सेना के प्रमुख के अलावा कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और कमांडर मौजूद थे। इस आयोजन में इस्लामी गणतंत्र ईरान की सेना के कमांडर इन चीफ ने देश की रक्षा क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अंजाम दिए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी रक्षा शक्ति बढ़ा रहे हैं और हमारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
ईरान की न्यायपालिका में मानवाधिकार समिति ने ईरानी नागरिक के संबंध में स्वीडिश अदालत के फैसले का समर्थन करने के लिए ईरान के मामलों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के रिपोर्टर के समर्थन की कड़े शब्दों में आलोचना की है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक हमीद नूरी एक ईरानी नागरिक हैं जो 2019 में अपनी घरेलू समस्याओं को हल करने के लिए स्वीडन गए थे, जहां उनके पहुंचते ही स्वीडिश सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग 32 महीनों से वो स्वीडन की जेल में कैद हैं। नूरी पर स्वीडन में 34 साल पहले ईरान में किए गए कुछ कार्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जबकि आरोप लगाने वाले ईरान विरोधी आतंकवादी संगठन मुजाहिदीन खल्क या MKO से संबंधित है। स्वीडन की एक अदालत ने 17,000 बेगुनाह ईरानी नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादी समूह MKO के सदस्यों की शिकायत पर हमीद नूरी के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को नूरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी।
ईरान और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों पर जोर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अपने यूक्रेनी समकक्ष दिमित्री कोलबा के साथ टेलीफोन पर बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ यूक्रेन संकट सहित कुछ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर युद्ध के खिलाफ ईरान के रुख का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जैसा कि हमने इस संकट की शुरुआत से बार बार तेहरान के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है, हम दुनिया के हर क्षेत्र में शांति चाहते हैं और हम यूक्रेन समेत अफगानिस्तान, यमन और फिलिस्तीन में जारी युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नीति भी उसी सिद्धांत के अनुसार है, हम किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ हैं जो संघर्ष और युद्ध को उकसाता हो। अमीर अब्दुल्लाहिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा आरंभ किए गए विशेष सैन्य अभ्यास ऑपरेशन में रूस को ईरानी ड्रोन भेजने के संबंध में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा हाल में लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरीकी अधिकारी का दावा तब आया जब जो बाइडेन ने अवैध अधिकृत फिलिस्तीन का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह से झूठ पर आधारित हैं और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे हैं।
रूस का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूक्रेन युद्ध को लेकर पक्षपात कर रहा है और इस मामले में वो निष्पक्ष नहीं है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान ये सिद्ध करता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर वे स्वयं पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हैं। इस बयान में गुटेरेस से मांग की गई है कि वे यूक्रेन से इस बात का स्पष्टीकरण मांगे कि उसने सैन्य प्रतिष्ठान को क्यों असैनिक प्रतिष्ठानों के पड़ोस में बनाया है। रूस का कहना है कि न तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, न उसके महासचिव ने और न ही इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य ने असैनिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों की निंदा नहीं की है। हालांकि राष्ट्र संघ के महासचिव ने एक बयान जारी करके असैनिक क्षेत्रों और आधारभूत ढांचों पर किए जाने वाले आक्रमणों की निंदा की है। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बीच होने वाला युद्ध अब 5वें महीने में दाखिल हो चुका है, किंतु इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस का कहना है कि पश्चिम की ओर से यूक्रेन के भेजे जाने वाले हथियारों के कारण ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, जिसके जिम्मेदार हथियार भेजने वाले देश हैं।
लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला का कहना है कि अगर युद्ध होता है तो जीत हमारी ही होगी। हिजबुल्ला के उप महासचिव शेख नईम कासिम ये कहते हैं कि पूर्व की तुलना में हिजबुल्ला बहुत बदल चुका है, अब अगर कोई युद्ध होता है तो इंशाल्लाह जीत हमारी ही होनी है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हमें वर्चस्ववादियों का डटकर मुकाबला करना है और इसी के साथ लेबनान की संप्रभुता की रक्षा भी करनी है। आंतरिक मामलों में हमें कुछ नहीं कहना है। नईम कासिम के अनुसार हमारा शत्रु कई मोर्चों पर पीछे हटने पर विवश हुआ है। हिजबुल्लाह के उप महासचिव का ये भी कहना था कि ईरान के साथ हमारा संबंध आस्था के आधार पर है। नईम कासिम ने कहा कि देश में अगर सरकार का गठन नहीं होता है तो फिर लेबनान की स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने समस्त नए सांसदों से एकजुट होकर वर्तमान संकट से निकलने का आह्वान किया। शेख नईम कासिम का कहना है कि पार्टीबाजी, दबाव, भ्रष्टाचार और अमेरिका के घेराव के कारण लेबनान इस समय मुश्किलों का शिकार है। उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष से लेबनान राजनीतिक एवं आर्थिक संकट का शिकार है। इस देश में पिछले वर्ष राजधानी बैरूत की बंदरगाह में हुए भीषण विस्फोट के बाद अधिक समस्याएं सामने आई हैं।
फिलिस्तीन के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हमास का कहना है कि कमजोर होते अवैध ज़ायनी शासन को अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा। हमास के प्रवक्ता हाजिम गासिम ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन की मध्य पूर्व की यात्रा का मुख्य लक्ष्य ज़ायनी शासन को मजबूत बनाना था, किंतु उनकी ये यात्रा किसी भी स्थिति में इसराइल के लिए लाभदायक नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इसराइल को आंतरिक उथल पुथल, गंभीर मतभेद, राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिरोधकर्ता गुटों की बढ़ती शक्ति जैसी कई प्रकार की समस्याओं का सामना है। ऐसे में उसे मुक्ति दिलाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा का उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमास के प्रवक्ता के अनुसार इस यात्रा से अवैध ज़ायनी शासन को इस्लामी जगत के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन 13 जुलाई 2022 को अवैध ज़ायनी शासन पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने फिलिस्तीन की तथा कथित स्वशासित सरकार के प्रमुख महमूद अब्बास से भेंट वार्ता की थी। इसके बाद वे सऊदी अरब गए, जहां पर उन्होंने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से भेंट वार्ता की। उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाजी कासिम ने ईरान प्रेस से बात करते हुए कहा था कि अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन की मध्य पूर्व की यात्रा का उद्देश्य एक सैन्य गठबंधन तैयार करना है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा सैन्य गठबंधन होगा जो हमेशा अवैध ज़ायनी शासन की सेवा में होगा।
अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा अन्य देशों में विद्रोह कराए जाने की स्वीकारोक्ति की वेनेजुएला ने कड़ी निंदा की है। वेनेजुएला के संसद सभापति ने शुक्रवार को जॉन बोल्टन को संबोधित करते हुए कहा था कि अमरीका वेनेजुएला में न केवल विद्रोह करवाना चाहता था बल्कि वो सैन्य हमले की भी फिराक में था। वेनेजुएला की संसद ने एक बयान जारी करके अमरीका द्वारा वेनेजुएला सहित लैटिन अमरीका के कई देशों में विद्रोह कराने की योजना की भर्त्सना की है। वहां के उप संसद सभापति ने कहा है कि दूसरे देशों में विद्रोह कराने के बारे में अमरीका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की स्वीकारोक्ति कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये अमरीका की विदेश नीति का ही एक भाग है। जॉन बोल्टन सन 2018 से 2019 के बीच अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं।
श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने इस देश के भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के दो अन्य भाइयों पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। श्रीलंका के न्यायालय ने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, जो भगोड़े राष्ट्रपति के भाई हैं, उन पर तथा उनके एक अन्य छोटे भाई बासिल राजपक्षे पर श्रीलंका छोड़कर चले जाने पर रोक लगा दी है। बासिल राजपक्षे श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर थे। हालांकि वे भी देश छोड़कर भागने का प्रयास कर चुके हैं, किंतु सफल नहीं हो पाए। श्रीलंका के भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे कुछ दिन पहले भागकर मालदीव चले गए थे, जहां से वे विमान द्वारा सिंगापुर चले गए और वहां से उन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया था। राजपक्षे परिवार को श्रीलंका की सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के आरोप हैं। जहाँ श्रीलंका में लोग आर्थिक बदहाली का शिकार हैं और मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं घंटों लाइन में लगाकर बहुत ही महंगी कीमत पर खरीद रहे हैं, वहीं पर श्रीलंका के भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया अपनी पत्नी के साथ सिंगापुर में शॉपिंग करते हुए नजर आए। लगभग 22 मिलियन की आबादी वाला देश श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जो इस देश में पिछले 70 वर्षों में अभूतपूर्व है। श्रीलंका के लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से देश की सत्ता गोटाबाया राजपक्षे तथा रनिल विक्रमसिंघे के परिवार के हाथों में है। वे इस देश की सत्ता के उच्च पदों को किसी दूसरे को आने ही नहीं देते हैं।
अमरीकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है। ये अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार डॉलर के मुकाबले में रुपया सबसे कमजोर हुआ है। इस समय एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचकर 80 हो चुका है। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोतो, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का कहना था कि सारे विकल्प मेज पर हैं, पर बाइडेन का नजरिया कुछ अलग है। सेना का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। तेल अवीव और रियाज की यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एक बार फिर कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। ये सवाल उतने गंभीर नहीं है जितना बाइडेन द्वारा आले सऊद शासन के युवराज से हाथ मिलाने पर खड़ा हुआ है।
Everything has to be on the table.
यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने का भरपूर प्रयास किया है और दूसरी ओर यूक्रेन को नई नस्ल के हथियारों से लैस किया है। यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ अब तक प्रतिबंधों के 6 पैकेजों का ऐलान कर चुका है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से 2022 के अंत तक 90% तेल के आयात में कटौती का ऐलान किया था।
अब यूरोपीय संघ ने रूस के लिए सोने के निर्यात पर पाबंदी लगा दी।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली सरकार अगर कश्मीर में शांति चाहती है तो उसे लोगों का दिल जीतना होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं और शांति के लिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए।
अल्लाह के फजल से जब लोग अमन चाहते हों तो अमन।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का कहना था कि सारे विकल्प मेज पर हैं, पर बाइडेन का नजरिया कुछ अलग है। सेना का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। तेल अवीव और रियाज की यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एक बार फिर कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। ये सवाल उतने गंभीर नहीं है जितना बाइडेन द्वारा आले सऊद शासन के युवराज से हाथ मिलाने पर खड़ा हुआ है। कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही रविश जैदी।
Everything has to be on the table.
अमरीका के पूर्व राष्ट्रपतियों का कहना था कि सारे विकल्प मेज पर मौजूद हैं।
All options are on the table.
लेकिन बाइडेन का नजरिया कुछ अलग है।
That was the last resort.
सेना का इस्तेमाल अंतिम विकल्प है। तेल अवीव और रियाज की यात्रा से पहले अमरीकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में आए परिवर्तन ने एक बार फिर कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं। ये सवाल उतने गंभीर नहीं है कि जितना बाइडेन द्वारा आले सऊद शासन के युवराज से हाथ मिलाने पर खड़ा हुआ है, क्योंकि स्वयं बाइडेन ने कहा था कि जमाल खाशुकजी की हत्या मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर हुई थी। सऊदी अरब को इसका हर्जाना देना होगा। लेकिन बिन सलमान के साथ बैठक में बाइडेन ने तेल की मांग की ताकि कांग्रेस के चुनाव में डेमोक्रेट्स को हार से बचाया जा सके, क्योंकि ऐसे वो तेल की कीमत को अमेरिका में कम कर सकेंगे।
Oh my goodness, this crisis is tearing me up.
इस बीच सऊदी अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की कि अरबों डॉलर खर्च करके जो अमेरिकी ड्रोन उन्होंने खरीदे हैं, क्यों वे यमनी ड्रोनों के आगे किसी काम के नहीं हैं, और आए दिन सऊदी अरब की तेल रिफाइनरियां निशाना बन रही हैं और आग में जल रही हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दर्द हैं और दोनों ही एक दूसरे से उसका इलाज चाहते हैं।
सऊदी अरेबिया।
लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका को इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि वो सऊदी अरब से अधिक तेल ले पाएगा। वहीं दूसरी ओर रियाज और वाशिंगटन के बीच सैन्य समझौतों को नजरअंदाज करते हुए राडार की नजरों से बचते हुए ड्रोन अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर बाइडेन का सऊदी अरब का दौरा दो पीड़ितों का आपसी मिलन सा दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने का भरपूर प्रयास किया है और दूसरी ओर यूक्रेन को नई नस्ल के हथियारों से लैस किया है। यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ अब तक प्रतिबंधों के 6 पैकेजों का ऐलान कर चुका है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से 2022 के अंत तक 90% तेल के आयात में कटौती का ऐलान किया था। समीक्षा पेश करें साथ ही मिसम अब्बास।
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के खिलाफ पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंधों के नए नए पैकेजों का ऐलान कर रहे हैं। अब यूरोपीय संघ ने रूस के लिए सोने के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव डालने का भरपूर प्रयास किया है और दूसरी ओर यूक्रेन को नई नस्ल के हथियारों से लैस किया है। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ अब तक प्रतिबंधों के 6 पैकेजों का ऐलान कर चुका है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से 2022 के अंत तक 90% तेल के आयात में कटौती का ऐलान किया था, लेकिन रूस के साथ सोने के व्यापार पर प्रतिबंधों का ऐलान ऐसी स्थिति में किया गया है कि जब यूरोपीय देशों को खुद आर्थिक मंदी का सामना है। यूरोपीय देश ईंधन की कमी और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। रूस ने भी यूरोप के लिए गैस की आपूर्ति में भारी कटौती कर दी है, जिसके कारण सर्दियों में इन देशों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने मास्को के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को गलत बताया है और इस संघ से इन प्रतिबंधों को रद्द करने का आह्वान किया है। ऑर्बन का कहना था कि यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस के खिलाफ कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों का खुद यूरोपीय देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दरअसल रूस के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंध खुदकुशी करने के समान हैं। पश्चिम के प्रतिबंधों की नीति अब पहले से भी ज्यादा असफल हो गई है, क्योंकि इन प्रतिबंधों का खुद प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर गहरा असर पड़ रहा है और वो आर्थिक संकट की दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसका एक असर ये हुआ कि पिछले 21 वर्षों में पहली बार डॉलर ने यूरो को पछाड़ दिया है। दूसरी ओर रूस पर इन प्रतिबंधों का वैसा असर नहीं पड़ रहा है जैसा अनुमान लगाया जा रहा था, बल्कि रूस ने कुछ इस तरह से प्रबंधन किया है कि उसकी आय घटने के बजाय बढ़ रही है। IAEA ने अपनी हालिया रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जून में रूस ने 20 अरब डॉलर का तेल निर्यात किया है। इसके बावजूद यूरोपीय संघ अब रूस पर सोने के व्यापार का प्रतिबंध लगाने जा रहा है। रूस विश्व में सोने के कुल उत्पाद का 8.5% उत्पाद करता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद वो विश्व में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला देश है। 2021 में रूस ने 15 अरब डॉलर का सोना निर्यात किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश अब जितने भी प्रतिबंध लगा रहे हैं वे सिर्फ सिंबॉलिक हैं और धरातल पर उनका कोई असर नहीं है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि दिल्ली सरकार अगर कश्मीर में शांति चाहती है तो उसे लोगों का दिल जीतना होगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं और शांति के लिए हमें अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए। सिप्ते मोहम्मद हसन।
अलगाववादी नेता मोहम्मद यासिन मलिक, जो बैनर JKLF के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा है कि रूबिया सईद अपहरण केस में अगरचे उसे आरोपी घोषित किया गया है, परंतु वो फिजिकल अपीयरेंस चाहते हैं। उनका कहना है कि वो इस केस में अपना डिफेंड खुद करेंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि उनके अपहरण में जिन लोगों का हाथ था, बताया जाता है कि NIA कोर्ट में रूबिया सईद ने उनकी निशानदेही कर दी है। JKLF के प्रवक्ता ने कहा है कि जो भी स्थिति पैदा हुई है उसमें जेकेएलएफ के अध्यक्ष मोहम्मद यासिन मलिक ये चाहते हैं कि वो फिजिकल अपीयरेंस में अपना दिफा करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक बार फिर नई दिल्ली से कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगर शांति स्थापित करनी है तो इसके लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। पार्टी समारोह के बाद पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं और शांति को एक अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा शांति के लिए हमें अपने नीतियों में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति पूर्वक जिंदगी बसर करना चाहते हैं और नई दिल्ली को ऐसा वातावरण बनाना होगा। उन्होंने इस अवसर पर नई दिल्ली से भी प्रार्थना की कि वो इस हवाले से सक्रिय कार्य करें।
आज हमारे साथ मिले हैं नौजवान लीडर है, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं और अपने इलाके में इन्होंने अपने बल पर काफ़ी काम किए हैं। मैं मुबारकबादी देता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इनके साथ पिछले 70 साल से ये सुनते आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि लोग अमन चाहते हैं और लोग ही सबसे बड़े इसके ये होते हैं, दे आर द बिगेस्ट जो स्टेक होल्डर्स, अमन के स्टेक होल्डर्स वही है। अल्लाह के फजल से जब लोग अमन चाहते हों तो अमन ही रहेगा। और अगर किसी ने जैसे पुलिस कांस्टेबल्स का भी उन्होंने ये किया तो मैं मानता हूँ ये सही डिसीजन है, लेकिन कितना अच्छा होता कि खाली जिन्होंने वो चोरी की उनको उसमें ड्रॉप किया जाता, बाकी जो जिनके उस चोरी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था उन बेचारों को क्यों सफ़र करवा रहे हो? एक ने गुनाह किया सबको नहीं ना सफ़र कराओगे, या 10 ने गुनाह किया जिस ने भी गुनाह किया उनको सज़ा दे दो और ऐसी सज़ा दे दो कि याद रखें।
इस बीच हज कंप्लीट होने के बाद हाजियों का आना अब आरंभ हो गया है और इस हवाले से फ्लाइट्स श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना शुरू हो गई है और पहला जत्था आज वापस आ गया है। इस अवसर पर वहां पर रूह परवर मनाजिर भी देखने को मिले। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
तो श्रोताओ, सिप्ते मोहम्मद हसन की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने अभी राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। अब पेश है दहे इस्मत व विलायत के संबंध में एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने ज़िलहिज में दो ईदें पड़ती हैं, ईद उल अज़हा या ईद कुर्बान तथा ईद गदीर। इन दोनों के बीच के समय को ईरान में दहे विलायत व इमामत का नाम दिया गया है। ये समय लोगों के लिए इस्लाम के आधार को समझने का बहुत अच्छा अवसर है। ईद कुर्बान वास्तव में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत का दिन है, जबकि ईद गदीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की इमामत की घोषणा का दिन है। थोड़े से अंतराल में पढ़ने वाली इन दो ईदों में सोच विचार करने से पता चलता है कि पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के अनुसरण के बिना ईश्वर की ओर कदम बढ़ाने, सांसारिक माया मोह को त्यागने और परिपूर्णता तक पहुंचना संभव नहीं है।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईश्वर के एक महान दूत थे। उन्होंने मानवता को एक ईश्वर को पहचानवाने के लिए अथक प्रयास किए। ईश्वरीय दूत होने के बावजूद उन्होंने बहुत बड़ी परीक्षा देकर इमामत जैसा ईश्वरीय पद हासिल किया। इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देनी पड़ी थी। इमामत जैसे महत्वपूर्ण पद के बारे में ईश्वर का कहना है कि ये पद ईश्वर की ओर से निर्धारित किया जाता है, कोई भी व्यक्ति स्वयं से इमाम नहीं बन सकता। इमामत का ईश्वरीय पद केवल उसी को दिया जाता है जो हर प्रकार के पापों से दूर होता है।
हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी इमाम का ईश्वरीय पद प्रदान किया गया था। ये काम 18 ज़िलहिज को हुआ था।
اسی دن پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا اتراधिकारी نیوکت کیا تھا۔ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پیغمبر اسلام کے پوتر پرجن ایشور اور لوگوں کے بیچ ایک پھول کے سمان ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایسی ذات کے مالک تھے جس کے بھیتر ساری وشیشتائیں پائی جاتی ہیں۔ لوگوں کے بھیتر جتنی بھی وشیشتائیں ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی سمے میں حضرت علی علیہ السلام کے بھیتر موجود تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا ویکتتو اتنا آکرشک ہے کہ سبھی لوگ ان کی اور آکرشت ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے وہ تک حضرت علی علیہ السلام کی وشیشتاؤں سے اوگت ہوتے ہیں تو ان کا سمان کرنے لگتے ہیں۔
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں اسلام کا صحیح سنچالن کرنے والے سب سے اچت ویکتی حضرت علی ہی تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت سنکھیا 55 اسی بات کی پشٹی کرتی ہے۔ اس آیت کے انوسار مومنوں کے مارگدرشن کا ادھیکار کیول اس کو حاصل ہے جو کچھ وشیشتاؤں کا سوامی ہو۔ آیت کہتی ہے کہ ہے ایمان والو، تمہارا ابھیبھاوک تتھا سوامی کیول ایشور، اس کا پیغمبر اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی استھتی میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پوتر قرآن کے ویاخاکار اس بات پر ایکمت ہیں کہ نماز کی حالات میں رکوع کے دوران زکوٰۃ دینے والی بات کیول حضرت علی سے ہی وشیش ہے۔ سب یہ مانتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کیول حضرت علی علیہ السلام نے ہی زکوٰۃ دی تھی۔ اتہاس اس بات کی ساکشی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں نماز کی حالت میں رکوع کے دوران فقیر کو انگوٹھی دی تھی۔
غدیر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ مولا عربی کا شبد ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک ارتھ اتراधिकारी بھی ہے جبکہ ایک انیہ ارتھ دوست کے بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے غدیر کے اپنے سمبودھن میں جو مولا شبد کا پریوگ کیا ہے اس کا ارتھ اتراधिकारी ہے، نہ کہ دوست یا متر۔ ان کے کتھن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بعد لوگوں کے ابھیبھاوک حضرت علی علیہ السلام ہیں جو پیغمبر اسلام کے اتراधिकारी ہیں۔ ایشور کی اور سے نردھارت امام لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہوئے ان کے کلیان کا کام کرتا ہے۔
دوستو، امام وہ ہوتا ہے جو سماج میں نیا استھاپت کر کے لوگوں کی سفلتا کی بھومیکا پرشست کرتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو ایشوریہ آدیشوں کے مادھیم سے لوگوں کا مارگ درشن کرتا ہے۔ پوتر قرآن کی آیتوں اور پیغمبر اسلام کے کتھنوں کے ادھیئن سے پتہ چلتا ہے کہ جس وجہ سے ایشور نے پیغمبر اسلام کو اپنا دودھ بنا کر بھیجا تھا، انہی کارنوں سے اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے سورگواس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو لوگوں کے مارگ درشن کا دائتو سونپا تھا۔ اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت ہر پرکار سے وید ہے۔ حضرت علی نے انہی نیموں کو لوگوں تک پہنچایا جن کو ایشور نے پیغمبر اسلام کو بھیجا تھا۔ اسلامی شاسن میں مول ستہ ایشور کی ہی مانی گئی ہے۔ ایشوریہ دوت یا امام اس شاسن کا ماتر سنچالن کرتا ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے انتم حج تتا اپنے سورگواس سے کچھ سمے پہلے غدیر خم نامک ستھان پر ایشوریہ آدیش کے آدھار پر حضرت علی کو اپنا اتراधिकारी نیوکت کیا تھا۔ یہ گھٹنا سن 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو گھٹی تھی۔
10 ہجری کو پیغمبر اسلام نے اپنا انتم حج کیا تھا۔ حج شروع ہونے سے پہلے اپنے اسلامی چھیتر میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ اس سال یہ میرا انتم حج ہوگا۔ اس اعلان کی وجہ سے 10 ہجری کے حج میں مسلمانوں کی بہت بڑی سنکھیا حج کرنے کے لیے پہنچی تھی۔ حج کی سماپتی کے بعد لگ بھگ 120,000 حاجی پیغمبر اسلام کے نیتت میں مکہ سے مدینہ کی اور بڑھے۔ حاجیوں کا کارواں جب غدیر خم نامک استھان پر پہنچا تو ایشور کے فرشتے جبرائیل پیغمبر اسلام کے پاس پوتر قرآن کے 5ویں سورہ مائدہ کی 67ویں آیت لے کر اتری۔ اس آیت میں مہان ایشور کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے ایشوری دوت ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ ایشور آپ کی لوگوں سے رکشا کرے گا، ایشور انکار کرنے والوں کا مارگ درشن نہیں کرتا۔
اس آیت کے اترنے کے بعد پیغمبر اسلام نے سبھی حاجیوں کو قدیر خم نامک ستھان پر رکنے کا آدیش دیا۔ وہ دن 18 ذلحج کا دن تھا۔ پیغمبر اسلام کے آدیش سے اونٹ کی پیٹ پر رکھی جانے والی کاٹھی کا ایک ممبر بنایا گیا۔ جب ممبر بن گیا تو اس ممبر پر پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے پاس حضرت علی علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اتراधिकारी کے روپ میں حضرت علی علیہ السلام کی نیوکتی کا اعلان کرنے سے پہلے بھاشن دیا۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں تم سے زیادہ ادھیکار نہیں رکھتا؟ اس سوال پر سبھی حاجیوں نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے۔
دوستو، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی اپنے اتراधिकारी کے روپ میں نیوکتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس نیوکت کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ہے ایشور، تو اسے دوست رکھ جو اسے ارتھات علی کو دوست رکھے، تو اسے دشمن رکھ جو اسے ارتھات علی سے دشمنی کرے، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے۔ اس اعلان کے بعد سورہ مائدہ کی یہ آیت اتری جس کا انواد ہے، آج ہم نے تمہارے دھرم کو تمہارے لیے پورا کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔
حضرت علی علیہ السلام کی پیغمبر اسلام کے اتراधिकारी کے روپ میں نیوکتی کے بعد حاجیوں کا کارواں قدیر خم نامک ستھان پر 3 دن رکا۔ اس دوران حاجیوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی ارتھات ان کے آگیا پالن کا پرن لیا۔ پرن لینے والوں میں مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے۔ 18 ذلحج کو مسلمانوں میں شیعہ سمپردائے اس کو عید کے روپ میں مناتا ہے۔ اسی کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انیہ مشہور کتھن ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ اپنے اس کتھن میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے لیے 2 مہتوپورن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب ارتھات پوتر قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ارتھات میرے پریجن۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے قیامت تک الگ نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام کے پوتر پریجنوں میں سب سے اوپر حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ ان دونوں سے یہ بات سدھ ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے وید اتراधिकारी حضرت علی علیہ السلام ہی ہیں۔ تو دوستو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، اب پیش ہے سبھا کا انتیم کارکرم اجول بھوش۔
اجول بھوش،
دعا
दोस्तों, कार्यक्रम उज्जवल भविष्य की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सैयद नीसम का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरानी सशस्त्र बलों की स्थिति की चर्चा करेंगे। पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि इस्लामी क्रांति के बाद जिन क्षेत्रों में ईरान ने उल्लेखनीय प्रगति की है उसमें से एक है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी। इमाम खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति की शानदार सफलता के बाद ईरान ने संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की बल्कि दुनिया के विकसित देशों के स्तर की तकनीक तक अपनी पहुंच बनाई है। दूर संचार का विकास अब सिर्फ टेलीफोन ग्राहकों की संख्या तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अलावा नए युग में अब स्मार्ट मोबाइल यहां तक कि 4G और 5G तकनीक भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का मैदान बना हुआ है। हाई स्पीड इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइटें भी अब इस क्षेत्र में प्रगति का एक मापदंड मानी जाती हैं। क्रांति से पहले देश में दूरसंचार तकनीक का कोई वजूद नहीं था और 100% तकनीक दूसरे देशों से आयात की जाती थी। क्रांति के बाद पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान के क्रांतिकारी इंजीनियरों ने कड़े प्रयास किए और आज देश को दूरसंचार तकनीक में दुनिया के विकसित देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया है। हर वो गांव जहां 20 से अधिक परिवार रहते हैं देश के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ईरान में इंटरनेट इस्तेमाल करने की दर 70% है। यहां तक कि एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करने वाले कबीले जो तंबुओं में रहते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उपग्रह संबंधित संचार उपकरणों का उत्पादन ईरान में घरेलू विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। डिजिटल सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर ब्रॉडबैंड नेटवर्क के संदर्भ में वीडियो स्ट्रीमिंग के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इन सॉफ्टवेयर्स में कई तकनीकी जटिलताएं हैं, इसीलिए इनकी निर्माण तकनीक दुनिया के कुछ विकसित देशों में ही उपलब्ध है और ईरान भी इन देशों में से एक है। लाइव और ऑन डिमांड इंटरनेट सामग्री का प्रसारण सबसे उन्नत तकनीकों में से एक है जिसे ईरान में नॉलेज बेस्ड कंपनियों के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन और उत्पादित किया जा रहा है। मध्यपूर्व में ईरान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अपना इंटरनेट सर्च इंजन है। ईरान बुनियादी ढांचे और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के हार्डवेयर के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है। 1979 में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद ईरान ने जिन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है उनमें से एक सैन्य उद्योग है। इस्लामी क्रांति ने ईरानी सशस्त्र बलों का सम्मान बढ़ाया है और 200 वर्षों तक विदेशी सेनाओं पर निर्भरता के बाद ईरानी सशस्त्र बलों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर किया है। पहलवी शासनकाल में विदेशों पर ईरान के सशस्त्र बलों की निर्भरता बहुत ही अपमानजनक हद तक थी क्योंकि ईरान के लिए हथियारों के सौदे में दोनों पक्ष अमरीकी ही होते थे। वे सलाहकार के रूप में हथियारों के लिए सिफारिश करते थे और दूसरी ओर से खुद ही हथियार भी बेचते थे और फिर उसकी क्वालिटी भी चेक करते थे। ईरान का शाही शासन इतना ज्यादा मजबूर था कि शाह कभी कभी खुद अपनी माँ और पत्नी से शिकायत किया करता था कि अमरीकी अधिकारी बिना उसकी अनुमति के ईरानी सैन्य टुकड़ियों को दूसरे देशों में तैनात कर देते हैं। ये वो सच्चाई है कि जिसका जिक्र खुद शाह और शाही परिवार के सदस्यों ने किया है। आज ईरान रक्षा रणनीति प्रशिक्षण और सामरिक संरचना में किसी पर निर्भर नहीं है और ये स्वतंत्रता कुछ प्रमुख विश्व शक्तियों को छोड़कर किसी देश में नहीं है क्योंकि करीब सभी देश रक्षा क्षेत्र में किसी हद तक दूसरी शक्तियों पर निर्भर करते हैं। शासकों की तानाशाही और लापरवाही ने सेना और सशस्त्र बलों को पूर्ण रूप से अप्रासंगिक बनाकर रख दिया था। इसी कारण अधिक मात्रा में हथियारों और सैन्य उपकरणों से लैस होने के बावजूद युद्धों में ईरान की हार हो जाती थी। रूसी साम्राज्य के आक्रमणों के मुकाबले में ईरान की हार और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में रजा शाह के शासनकाल के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा सभी ईरानी क्षेत्रों पर कब्जा और द्वितीय विश्व युद्ध में रजा शाह के उत्तराधिकारी के शासनकाल में एक भी गोली चलाए बिना कई इलाकों पर कब्जा, इसके कुछ उदाहरण हैं। ईरान में शाही शासन की शैली कुछ इस तरह से थी कि पिछले 300 साल में कई बार ईरान पर दूसरे देशों ने हमला किया। ईरान के एक भाग को उससे अलग कर दिया गया। पिछली 3 शताब्दियों में ईरान का क्षेत्रफल 3.7 मिलियन किलोमीटर से घटकर सिर्फ 1.7 मिलियन किलोमीटर रह गया। विभिन्न राज्यों को ईरान से काट दिया गया और पड़ोसी देशों को दे दिया गया या उन्हें स्वाधीन देश बना दिया गया। इसमें से सबसे नई मिसाल बहरीन की है, जिसे मोहम्मद रजा शाह के शासनकाल में 1971 के दौरान एक स्वाधीन देश बना दिया गया। रजा शाह और उसके बेटे मोहम्मद रजा शाह के 57 वर्षीय शासनकाल में ईरानी सेना ब्रिटेन, अमरीका और इसराइल पर निर्भर थी। उस दौरान ईरानी सेना का काम देश में आजादी की किसी भी आवाज को दबाना और वियतनाम, ओमान और फिलिस्तीन जैसे देशों में अत्याचारपूर्ण जनता के दमन में सहयोग करना था, जो ईरानी राष्ट्र के लिए किसी अपमान से कम नहीं था। लेकिन आज ईरान की सशस्त्र सेनाएं दुनिया भर में अत्याचारपूर्ण लोगों की मदद को अपने लिए गर्व समझती हैं। शाही और विदेशियों के वर्चस्व से ईरानी सशस्त्र बलों की मुक्ति और ईरानी राष्ट्र के साथ उनके संबंध ने ईरानी सशस्त्र बलों को इतनी गरिमा और अधिकार प्रदान कर दिया है कि वे एक अजेय सेना बन गई है। और हालिया शताब्दियों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन ने विश्व शक्तियों के समर्थन से ईरान पर हमला किया, लेकिन देश की एक बालिश जमीन पर कब्जा किए बिना उसे पीछे हटना पड़ा। इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद सद्दाम ने पश्चिम और पूरब की 2 महाशक्तियों और यूरोपीय देशों के समर्थन से ईरान पर हमला कर दिया था और ईरान को नष्ट करने की कसम खाई थी। लेकिन ईरानी सशस्त्र बलों ने जनता की सहायता से 8 वर्ष तक अपने राष्ट्र की रक्षा की और दुश्मन को अपमानजनक हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। 8 वर्षीय युद्ध में ईरानी राष्ट्र और ईरानी सशस्त्र बलों की शानदार जीत और उसके बाद लगातार अमेरिका और ब्रिटेन जैसी आक्रामक ताकतों के मुकाबले में सफल प्रतिरोध ने ईरानी सशस्त्र बलों को एक अजेय बल में परिवर्तित कर दिया है। आज ईरान सभी साम्राज्यवादी और वर्चस्ववादी शक्तियों के मुकाबले में पूरी ताकत और सम्मान के साथ डटा हुआ है और विश्व भर में स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए एक आदर्श है। ईरानी सशस्त्र बलों और प्रतिरोध की क्रांतिकारी विचारधारा और रणनीतियों से प्रभावित होकर आज हिजबुल्ला, फिलिस्तीनी प्रतिरोधी संगठन, सीरियाई पीपुल्स आर्मी, इराकी हशदुशाबी और यमन के जन आंदोलन अंसारुल्ला ने अमरीका और इसराइल के अजय होने के मिथक को चकनाचूर कर दिया है। विचारधारा और लोकप्रियता ने ईरानी सेना को अजय बना दिया है। इस्लामी क्रांति के बाद लोगों ने स्वेच्छा से अपने राष्ट्र की रक्षा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी प्रेम और इच्छा के आधार पर आज ईरानी बल अग्रिम मोर्चे से लेकर देश के कोने कोने तक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित बना रहे हैं। स्वयंसेवी बल देश भर में मौजूद हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण आज ईरान क्षेत्र के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है। ईरान के सशस्त्र बलों के आत्मनिर्भर होने का विचार क्रांति की सफलता की शुरुआत में ही इस क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी ने पेश कर दिया था। امام خمینی کا ماننا تھا کہ ایران کو سبھی کشیتروں میں آتم نربھر بننے کے ساتھ ہی رکشا کشیتر اور سینیہ ادیوگ میں آتم نربھر بننا چاہیے۔ ایران کی اسلامی کرانتی کی چھتر چھایا میں آج دیش میں وبھن پرکار کے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا اتپادن کیا جاتا ہے۔ ایران توپ، گولے، ٹینک، مشین گنیں، یدھپوت، میزائل اور وایو رکشا پرنالی تک سب کچھ بنا رہا ہے۔ پرارمبک ڈیزائن سے لے کر نرمان، وترن اور سنچالن تک دور سنچار اور وائرلیس اپکرنوں اور الیکٹرانک یدھ اپکرنوں کا اتپادن ایران میں کیا جا رہا ہے۔ رکشا ہتھیاروں میں سب سے جٹل ہتھیار یعنی وایو رکشا پرنالی اور رڈار کا دیش میں نرمان کیا جا رہا ہے۔ ایسا سسٹم جو 200 کلومیٹر کے بھیتر چھوٹے سے چھوٹے ہتھیاروں اور یدھک ویمانوں کا پتہ لگا لیتا ہے اور انہیں ٹریس کر کے نشٹ کر دیتا ہے دیش میں موجود ہے۔ یہ سسٹم 3D واتاورن میں سپر سونک گتی سے چلنے والے لڑاکو ویمانوں کو بھی نشٹ کرنے کی کشمتا رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں وستار سے ہم اگلے کاریکرم میں بات کریں گے۔ کاریکرم کا سمے یہیں سماپت ہوا، ہمیں اجازت دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، ہمارا پریاس آپ کو کیسا لگا اس بارے میں اپنے وچار آپ ہمیں اوشیہ لکھ بھیجیے۔ سبھا کے سماپن سے پورو مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر۔ ایران نے نوسینا کے پہلے ڈرون بیڑے کا اناورن کیا ہے۔ ایران کے ساتھ مل کر یوکرین یدھ سماپت کرنے کا راستہ کھوجنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو جیت پھر اسی کی ہوگی۔ حماس نے کہا ہے کہ بائیڈن کی یاترا اسرائیل کو مکتی نہیں دلا سکتی۔ اپنی پرتکریاؤں کو دوستوں آپ ہمیں ای میل کے مادھیم سے بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے ان کاریکرموں کو آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں parstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کی یہ سبھا یہیں پر سمپن ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔